रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अपदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे।
साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।
स्वीकार कर लो दिल सबका, अपना बना लो हे प्रभु, स्वीकार कर लो दिल सबका, अपना बना लो हे प्रभु, जो
साथियों अभी आपने सुना यह मधुर गीत। साथियों आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का, तो साथियों आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। साथियों इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत, तो साथियों कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम पर्यावरण।
श्रोताओं परविंदर अरोरा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। पर्यावरण के तहत आइए सुनते हैं आज की वार्ता जिसका शीर्षक है प्रदूषण का तर्कसंगत समाधान हो। श्रोताओं चेतन भगत एक मशहूर उपन्यासकार लिखते हैं, एक घर था जिसकी छत से पानी रिसता था, किसी ने इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया, हालात खराब होते गए, परिवार के सदस्यों को तकलीफ होती। एक दिन घर का एक छोटा बच्चा एक योजना लेकर आया। श्रोताओं वह अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के सेट से गोंद और कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले आया। उसने कहा इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। परिवार के सदस्यों का दिल भर आया। बालक के चेहरे के वे प्यारे भाव, आंखों में उत्साह की चमक और यह तथ्य कि घर में वही ऐसा था जो समस्या को लेकर कुछ करना चाहता था, उसे प्रशंसा का हकदार बनाता था। श्रोताओं हर किसी ने उससे कहा शाबाश इतनी अच्छी सोच और स्मार्ट आइडिया के लिए। प्रत्येक व्यक्ति ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और उसके गाल खींचे। हालांकि जरूरत इस बात की थी कि कोई उसे बताए कि बेटे तुम्हारे विचार तो अद्भुत हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि यह प्लान काम नहीं देगा। हालांकि ऐसा कौन है जो रूखे अंकल की भूमिका निभाकर यह कड़वी बात उसे बताए। श्रोताओं इस उदाहरण में रिश्ती छत और घर दिल्ली में प्रदूषण के रूपक हैं। गोंद और कार्डबोर्ड का समाधान सम विषम नंबर प्लेटों की दिल्ली सरकार की योजना है। श्रोताओं और वह प्यारा सा बच्चा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी में इतने सारे प्यारे और तत्पर लोग हैं कि आपको हर किसी के गाल खींचने में हफ्तों लग जाएंगे। श्रोताओं उक्त उदाहरण सिर्फ वास्तविक मुद्दों को उजागर करते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या ही नहीं है, समस्या है और बहुत भयावह है। हालांकि कभी कभी प्रस्तावित समाधान वैसा नहीं होता जो काम दे। श्रोताओं इसके पहले कि हम घोषणा करने के लिए दौड़ पड़े, हमें चीजों को तार्किक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक ढंग से देखने की जरूरत है। श्रोताओं शुरू से देखें तो अब भी यह स्पष्ट नहीं कि राजधानी में प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। कारखाने, पड़ोसी राज्यों में फसलों को जलाया जाना, बिजली घर, चूल्हों में कोयले या लकड़ी का जलाया जाना, पुराने ऑटो रिक्शा और जर्जर पुराने वाहनों में से कौन दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है? श्रोताओं, संयोग की बात है कि सम विषम योजना के दायरे में इनमें से कोई स्रोत नहीं आता। दिल्ली के प्रदूषण को निजी वाहन कितना बढ़ा रहे हैं, इसकी स्पष्ट धारणा के बिना इनमें से आधे वाहनों को हर वक्त बेकार पड़े रहने देना तो काला कानून ही कहलाएगा। यह कोई अच्छी सोच नहीं है। श्रोताओं, फिर यदि हमें इस योजना पर आगे बढ़ना भी हो तो हमारे पास इतना यातायात पुलिस बल नहीं कि नियम के पालन पर नजर रखी जाए। श्रोताओं, योजना के समर्थकों को विश्वास होगा कि लोग अच्छे हैं और इसका खुद पालन करेंगे, लेकिन यदि हम अच्छे होते तो भारत की सारी योजनाएं अच्छा काम दिखाती और हम विकसित देशों में नहीं आते। श्रोताओं, फिर नियम को दरकिनार करने के जायस नंबर प्लेट के लिए एक और कार खरीद लें। हो सकता है यह पुरानी सेकेंड हैंड और ज्यादा प्रदूषण वाली हो, या नाजायज तरीके जैसे फर्जी इमरजेंसी सर्टिफिकेट, पुलिस को रिश्वत, नंबर प्लेट बदलना या जोखिम लेकर देखना। श्रोताओं, तरीके अनेक हैं। योजनाओं को लेकर शुरुआती उत्साह और मीडिया का फोकस खत्म होने के बाद दिल्ली वाले अपनी कार सड़क पर लाने के लिए कोई ना कोई तरीका खोज ही लेंगे। श्रोताओं, जो लोग नियमों का पालन करेंगे वे पहले से ही बोझ के तले दबी जा रही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर और बोझ बढ़ा देंगे। ऑटो या तो मिलेंगे ही नहीं या जरूरत से ज्यादा वसूली में लग जाएंगे। श्रोताओं, पहले ही खचाखच भरी मेट्रो ट्रेनों की हालत और खराब हो जाएगी। दिल्ली के पास कोई पेरिस व सिंगापुर जैसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तो है नहीं। चाहे अस्थायी रूप से ही सही, ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ कुछ क्षेत्रों में इसका भयंकर नकारात्मक साइड इफेक्ट होगा। कई ड्राइवरों के पास काम ही नहीं होगा। माल ढुलाई ठीक से ना होने के कारण महंगाई बढ़ेगी। निजी वाहनों में स्कूल जाने वाले बच्चे और सम विषम की समय सीमा के आर पार को काम करने वालों को बहुत परेशानी भुगतनी होगी। इस रेडीमेड समाधान को अपनाने का सबसे बुरा असर तो यह होगा कि इससे यह झूठा एहसास निर्मित होगा कि हमने प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ किया है, जबकि वास्तविक समाधान की अनदेखी होगी। श्रोताओं, मैक्सिको और बोगोटो जैसे जिन देशों में यह योजना अजमाई गई है वहां यह नाकाम रही है। बीजिंग का उदाहरण प्रायः दिया जाता है, लेकिन वहां इस उपाय ने थोड़ा ही असर दिखाया है और यह एक खास आयोजन के लिए अस्थायी तौर पर उठाया गया कदम था। फिर चीन कोई लोकतंत्र तो है नहीं और यह योजना किसी एकाधिकारवादी देश के ही अनुकूल है। लोकतांत्रिक भारत में हमें लोगों की आजादी चुराने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। वे याद दिलाते हैं कि बीजिंग में उन लोगों पर टैंक दौड़ा दिए थे जिन्होंने उस तरह का आंदोलन चलाने की कोशिश की जिस तरह के आंदोलन से आपका जन्म हुआ। इसलिए दोनों शहरों की तुलना करते समय हमें सावधानी बरतनी होगी। श्रोताओं, समाधान मौजूद तो है। दीर्घकालीन समाधान तो यह है कि दिल्ली जैसे विश्व स्तरीय शहर और बनाए जाएं, ताकि सुपर मेट्रो शहरों पर पड़ रहे दबाव कम हो सके। सुपर मेट्रो को बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की जरूरत है। अल्पावधि में कुछ दफ्तरों के लिए काम के अलग अलग घंटे तय कर सकते हैं। इससे सड़कों पर दबाव कम होगा और यातायात तेजी से आगे बढ़ेगा। ट्रैफिक जाम में फंसी कार तेजी से अपनी यात्रा पूरी करती कार की तुलना में ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। श्रोताओं, हम नई कारों की खरीद पर टैक्स बढ़ा सकते हैं या उनकी संख्या को सीमित कर सकते हैं। श्रोताओं, हमें राजधानी की हर कार पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी ट्रैकिंग टैग लगाने की जरूरत है, ताकि हम व्यस्तता वाले समय में अतिरिक्त शुल्क वसूली जैसे सड़क के अधिकतम उपयोग के उपायों को लागू कर सके। श्रोताओं, टैक्सी शेयरिंग ऐप को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अभी तो उबेर और ओला ड्राइवरों को परेशान किया जाता है, क्योंकि सड़कों पर कारों की संख्या घटाने की दिशा में वे बहुत कारगर भूमिका निभा सकते हैं। श्रोताओं, आपको यह तो श्रेय है कि उसने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर कुछ करने की कोशिश की है। श्रोताओं, दिल्ली साफ सुथरी हवा की हकदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक समझदारी भरे समाधान खोजने होंगे। इसी के साथ वार्ता समाप्त करती हूँ। नमस्कार।
साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पर्यावरण। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत। साथियों, अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों, हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है RVA हिंदी। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है RVA हिंदी। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @RVA हिंदी। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है RVA हिंदी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satishwar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो RVA मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए RVA हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का आप सभी का हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।
हर दिशा, हर मकाम तुम्हारी ही निशान है। हर